क्या इन लोगों को मालूम नहीं है कि वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है। सूरह तौबा आयत 103 और 104। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन अल्लाह के हाँ मोहसिनों का हक़ुल खिदमत मारा नहीं जाता है। इसी तरह ये भी कभी ना होगा कि राह खुदा में थोड़ा या बहुत कोई खर्च वो उठाएं और सही व जिहाद में कोई वादी वो पार करें और उनके हक में उसे लिख ना लिया जाए, ताकि अल्लाह इनके अच्छे कारनामे का सिला उन्हें अता करे। सूरह तौबा जुज आयत 120 और आयत 121। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन मुसलमानों का हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से अलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। सूरह रात आयत 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि नमाज कायम करें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खुले और छुपे राह खैर में खर्च करें, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद व फरोख्त होगी और ना दोस्त नवाजी हो सकेगी। सूरह इब्राहिम आयत 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया और बाबरकत किया जहाँ भी मैं रहूँ, और नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। सूरह मरियम आयत 30 और 31। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस किताब में इस्माइल का ज़िक्र करो, वो वायदे का सच्चा था और रसूल नबी था, वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। सूरह मरियम आयत नंबर 54, 55। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, और हमने उन्हें वही के ज़रिए नेक कामों की और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। सूरह अंबिया आयत 73। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशारत दे दे आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो इनके दिल कांप उठते हैं, जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सूरह अलहज आयत जुज आयत 34 और आयत 35। तशरीह। इससे पहले हम इस अमर की तशरीह कर चुके हैं कि अल्लाह ने कभी हराम और नापाक माल को अपना रिस्क नहीं फरमाया है। इसलिए आयत का मतलब यह है कि जो पाक रिस्क हमने उन्हें बख्शा है اور جو حلال کمائیاں ان کو عطا کی ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ سے مراد بھی ہر طرح کا خرچ نہیں ہے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز ضروریات پوری کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں اور حاجت مند لوگوں کی مدد کرنا، رفاہ عام کے کاموں میں حصہ لینا، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مالی ایثار کرنا مراد ہے۔ بے جا خرچ اور عیش و عشرت کے خرچ اور ریاکارانہ خرچ وہ چیزیں نہیں ہے جسے قرآن انفاق قرار دیتا ہو، بلکہ یہ اس کی اصطلاح میں اسراف اور تبذیر ہے۔ اسی طرح کنجوشی اور تنگ دلی کے ساتھ جو خرچ کیا جائے کہ آدمی اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ رکھے اور خود بھی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی ضرورتیں پوری نہ کرے اور خلق خدا کی مدد بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے سے جی چرائے، تو اس صورت میں اگرچہ آدمی خرچ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، مگر قرآن کی زبان میں اس خرچ کا نام انفاق نہیں ہے، وہ اس کو بخل اور شح نفس کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 41۔ تشریح، یعنی یہ فیصلہ کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مغرور بندے اس غلط فہمی میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خود ہیں، مگر جو طاقت ایک ذرا سی بیج کو تناور درخت بنا دیتی ہے اور ایک تناور درخت کو بیزام سوختنی میں تبدیل کر دیتی ہے، اسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن کے دبدبے کو دیکھ کر لوگ خیال کرتے ہوں کہ بھلا ان کو کون ہلا سکے گا، انہیں ایسا گرائے گا کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں، اور جنہیں دیکھ کر کوئی گمان بھی نہ کر سکتا ہو کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکیں گے، انہیں ایسا سربلند کرے کہ دنیا میں ان کی عظمت اور بزرگی کے ڈنکے بج جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ سورہ الحج جز آیت 78۔ تشریح، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ہدایت اور قانون زندگی بھی اسی سے لو، اطاعت بھی اسی کی کرو، خوف بھی اسی کا رکھو، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کرو، مدد کے لیے بھی اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اپنے توکل و اعتماد کا سہارا بھی اسی کی ذات کو بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ سورہ المومنون آیت نمبر 4۔ تشریح، زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے میں معنی کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ जिसे नजरअंदाज करके दोनों को हम माने समझ लेना सही नहीं है। आखिर कोई बात तो है जिसकी वजह से यहाँ मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए यूतुन ज़कात का मारूफ अंदाज छोड़कर लिज़कती फाइलून का गैर मामूली तर्ज बयान इख्तियार किया गया है। अरबी जबान में ज़कात का मफहूम दो मानों से मरकब है, एक पाकिजगी, दूसरे नशोनुमा। किसी चीज की तरक्की में जो चीज माने हो उनको दूर करना और उसके लिए उसके असल जौहर को परवान चढ़ाना, ये दो तसव्वुरात मिलकर ज़कात का पूरा तसव्वुर बनाते हैं। फिर ये लफ्ज़ जब इस्लामी इस्तिलाह बनता है तो इसका इतलाक दो मानों पर होता है। एक वो माल जो मकसद तज़किये के लिए निकाला जाए, दूसरे बजाय खुद तज़किये का फेल। अगर यूतून ज़कात कहें तो इसके माने ये होंगे कि वो तज़किये की गर्ज से अपने माल का एक हिस्सा देते हैं या अदा करते हैं। इसी तरह बात सिर्फ माल देने तक महदूद हो जाती है, लेकिन अगर लिज़कात फाइलून कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो तज़किये का फेल करते हैं, और इस सूरत में बात सिर्फ माली ज़कात अदा करने तक महदूद ना रहेगी, बल्कि तज़किये नफ्स, तज़किये अखलाक, तज़किये ज़िंदगी, तज़किये माल, गर्ज हर पहलू के तज़किये तक वसी हो जाएगी। और मजीद बरां इसका मतलब सिर्फ अपनी ही जिंदगी के तज़किये तक महदूद ना रहेगा, बल्कि अपने गिर्दो पेश की जिंदगी के तज़किये तक भी फैल जाएगा। लिहाजा दूसरे अल्फाज में इस आयत का तर्जुमा यूं होगा कि वो तज़किये का काम करने वाले लोग हैं, यानी अपने आप को भी पाक करते हैं और दूसरों को भी पाक करने की खिदमत भी अंजाम देते हैं। अपने अंदर भी जौहर इंसानियत को नशोनुमा देते हैं और बाहर की जिंदगी में भी इसकी तरक्की के लिए कोशां रहते हैं। ये मजमून कुरान मजीद में दूसरे मुकामात पर भी बयान फरमाया गया है। मसलन सूरह आला में फरमाया, खद अफलाहा मन तज़क्का वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, फला पाई उस शख्स ने जिसने पाकिजगी अख्तियार की और अपने रब का नाम याद करके नमाज पढ़ी। और सूरह शम्स में फरमाया, खद अफलाहा मन ज़क्काहा वखद ख़ाबा मन दस्साहा, बामुराद हुआ वो जिसने नफ्स का तस्किया किया और नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबा दिया। मगर ये आयत इन दोनों की बनिस्बत वसीतर मफहूम की हामिल है, क्योंकि वो सिर्फ अपने नफ्स के तस्किये पर जोर देती है और ये बजाय खुद फेल तस्किये की अहमियत बयान करती है, जो अपनी ज़ात और माशरे की जिंदगी दोनों ही के तस्किये पर हावी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है। उनमें ऐसे लोग सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और अकामत नमाज और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं कर देती। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल उलटने और दीदे फतरा जाने की नौबत आ जाएगी। सूरह नूर आयत 36 और 37। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल की ताद करो امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ سورہ نور آیت 56۔